नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। नाम है इसका बीद चेन सीरीज। ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मांगकाबू से लगभग पिछले 3 महीने से हम हर दिन आपके साथ जुड़ रहे हैं और बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं। इस छोटी सी पहल के लिए एक छोटा सा सीड कारण था। ये जो बदलाव का वक्त है, चैलेंजिंग टाइम्स है, इन समय में हम सभी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की खोज कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक की हमें आवश्यकता थी और ब्रह्मा कुमारीज ने आपका हाथ थामा और मदद की हाथ आगे बढ़ाया। कोशिश यही थी कि इस बदलाव के दौर में जो भी हम मिलकर कर रहे हैं, जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उन सब के लिए स्पिरिचुअल विजडम हो, इमोशनल सपोर्ट हो या गाइडेंस हो, वो ब्रह्मा कुमारीज ऑफर कर सकें। और इस यात्रा में ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन बनकर हर दिन हमारे साथ जुड़ते और हमारे प्रश्नों का उत्तर देते आए हैं। आज हम 100वें एपिसोड तक पहुंचे हैं और इस 100वें एपिसोड तक की कड़ी को जोड़ने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं हमें मिली हैं। आज इस कार्यक्रम के प्रेरणापुंज जो रहे हैं, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया इस कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने आप सबके लिए कार्यक्रम डिजाइन किया, जो हमारे प्रेरणा मूर्त रहे हैं, ब्रह्मा कुमार करुण भाई जी आज मास्टर ऑफ मेडिटेशन बनकर स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं। भाई जी ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रभाग के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारी के मल्टीमीडिया चीफ हैं और ब्रह्मा कुमारी के साथ के 60 वर्षों से भी अधिक सफर में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को देश विदेश में फैलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। आइए आज उनसे हम बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं सीधे इस वीडियो के लाइव कमेंट सेक्शन में। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न टाइप इन कीजिए और उन प्रश्नों को हम फीड से लेंगे और भाई जी से आज उन प्रश्नों का समाधान लेंगे। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आप महसूस कर रहे हैं, तो भी आपको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गिव अस अ शाउट आउट एंड वी विल ऑल शो दोज ऑन द स्क्रीन। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। करुणा भाई जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
थैंक यू।
आज हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़ते हैं। भाई जी, पहले तो मैं, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इस बात की खुशी है और 100 एपिसोड्स हम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे कुछ गुड विशेस लेना चाहूंगा कि ये जो बदलाव का वक्त आया है, इसमें ब्रह्मा कुमारी ने जो कोशिशें की है, बहुत सारे लोगों तक, सिर्फ इस माध्यम से नहीं, ब्रह्मा कुमारी के देश विदेश के अनेकों सेवा केंद्रों ने वेरी क्विकली इंटरनेट के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को चेंज किया और वहां के थ्रू स्पिरिचुअल विजडम ऑफर करना शुरू किया। उसके बारे में आप कुछ हमारी ऑडियंस को शेयर करें।
ओम शांति, सत्यम, शिवम, सुंदरम। हम सभी एक तरफ ये मानते हैं सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, ऐसे भी लोग कहते हैं कि हम तो ईश्वर के हाथ में चल रहे हैं, करण करावनहार या इस सृष्टि को चलाने वाला वो ईश्वर है। ये एक संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति थी। कुछ समय वो कुछ पाश्चात्य विचारों के कारण या जीवन शैली के कारण या समय के अनुसार जितना पैसे की जो प्रभाव बढ़ता गया, तो पैसा कमाने की एक विधि विधान के तरफ हमारे जनरेशन्स गए। पर ये जो समय पुनः जो भारतीय संस्कृति थी, अब फिर से वही सारे विश्व को आकर्षित कर रही है। तो सदा हम कहते हैं कि भाई, एक अंगुली दूसरे के तरफ दिखाते हैं तो चार तो अपने तरफ है। तो सारा समय हम यही सोचते हैं कि हम बहुत बिजी है, समय नहीं है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये कॉमन आंसर होता था, पर ये समय ने हम सबको सिखा दिया, दिखा दिया कि कुछ समय अपने लिए भी तो देओ भाई, कभी कभी तो उंगली अपने तरफ तो उठाओ कि अब हमको मालूम हो रहा है हम कौन है, हमारे भी एक परिवार भी है, हम सबको साथ रहना है। तो ये सब बातें धीरे 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 हम लोगों को अभी वापस आ रहे हैं, जिसको हम एक जमाने में कहते थे कि जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये केवल एक यादगार ही रहा है। पर अब तो देखो अचानक ये 5-6 मास में हरेक को अच्छा लग रहा है, अपने घर में रहना अच्छा लग रहा है, परंतु थोड़ा सा उसमें अपने अपने संस्कार का, हमारी जो साथ रह के खुश रहने की जो विधि है वो सभी को अभी सीखना पड़ रहा है, क्योंकि ये किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया अभी तक। अभी तक तो डॉलर कमाने की ही सिखा रहे हैं, परंतु अब जो समय है वो हमको साथ जीने का सिखा रहा है। थोड़ी मुश्किलात हो रही है, छोटे छोटे संस्कार सबका आपस में ठकरा रहा है, परंतु सत्य यही है कि हम और हमारे वो साथ रहने की विधि को हम कहते हैं राजयोगा। जो राजयोगा जो यहां सिखाया जा रहा है वो साथ हम कैसे रहे, एक ईश्वर के बच्चे एक ही विश्व में एक परिवार होके रहने की जो शिक्षा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 80 साल से ऊपर ये सिखाया जा रहा है। तो इसको आज हम सबके पास डिजिटल मीडिया द्वारा ले आ रहे हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से ले आ रहे हैं ताकि आपका एक सुखमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, सेफ जीवन हो। सभी कहते हैं स्टे एट होम, तो वो अभ्यास हम अभी कर रहे हैं जो अभी तक हम कर नहीं पाए थे। छोटा बच्चा 3-4 साल ही नहीं हुआ, किंडरगार्टन में जाओ, स्कूल में जाओ, जाओ घर से जाओ, पर अब हम सब साथ में हैं। तो साथ में हम अपने ही संस्कारों को एक बनाकर एक दो से एडजस्ट करते हुए किस प्रकार से हम ईश्वर के बच्चे बनकर रह सकते हैं, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते आए हैं जो अभी 100 एपिसोड इन्होंने किया है, तो बहुतों को इसका लाभ मिला है। मुझे सब बता रहे हैं कि भाई कितना अच्छा चला है। तो अभी भी हम लोग इसको भिन्न भिन्न प्रकार से, आप लोगों का समय का भी सफलता हो जाए, आपको कुछ नई बात भी रोज मिले, तो इस प्रकार इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपकी इंस्पिरेशंस के लिए और मोटिवेशन के लिए। मैं आज के कार्यक्रम के पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूं। फेसबुक पे हमारे साथ लाइव दिव्या प्रोग्राम देख रही हैं। दिव्या प्रश्न पूछती हैं, आई गेट टू मच डिस्टर्ब्ड इफ समथिंग डज नॉट हैपन एज पर माय प्लान। When I listen to some inspirational talk, I realize that I am wrong. However, I cannot remember it every time. Please suggest. Divya ji कहती हैं कि वो बहुत disturbed हो जाती हैं जब उनके plan के अनुसार जैसे वो चीजें चाहती हैं वैसे नहीं होती हैं तो। मगर जब भी वो कुछ inspirational talk या इत्यादि सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि मैंने गलती की है, तो उसको सुधार करने की कोशिश करती हैं। बट वो कहती हैं कि मैं इस चीज को हमेशा याद नहीं रखती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, कुछ सजेस्ट करें, ऐसा दिव्या पूछती हैं।
हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न दिव्या बहन। ये समय हर व्यक्ति अपने विचार को इतना प्रोमिनेंस ले देता है कि वही हो, सब लोग वही माने और वही सही है। ये विचार इस समय पर चाहे छोटे चाहे बड़े सब जगह में है, परंतु जिस संस्था में मैं हूं अभी यहां हमारे जो मुख्य दादी प्रकाशमणि जी थे, उन्होंने इस संस्था को, बहुत छोटा सा एक संस्था था, आज सारे विश्व में है, तो इसका एकमात्र कारण है दादी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा विचार। उन्होंने हर विचार को हमारे विचार, तो हमारे माना, जो विचार दादी जी को होता था तो अपने साथ वालों को भी साथ लेकर के उनको भी खुशी मिले, उनको भी ऐसा लगे कि ये भी मेरा विचार है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, तो ऐसा सबका साथ, जो आजकल आप सुनते हैं ना, तो सबका साथ लेना ही इसको हम कहते हैं श्रेष्ठ विचार। तो जिससे क्या होगा, आपको पहले तो आपका सुनकर के एक शुभ भावना, दुआएं देंगे लोग, अच्छा ये तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। तो जब दुआएं मिलते हैं, जो आपका जो सोच है वो एक शक्ति का स्वरूप लेता है, जिसको हम कहते हैं सफलता। जो भी आप काम करें वो सफल कैसे हो, लोग समझते हैं पैसे से हो जाती है, नहीं, साथ से हो जाता है, दुआओं से हो जाती है। तो इसीलिए दिव्या बहन, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप थोड़े से अपने साथियों को भी साथ लेके आप करेंगे, आप सदा ही सफलता की ओर जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, कोयना नाम है इनका, और कोयना कहती हैं कि ये क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, आई एम 12th पास आउट स्टूडेंट विद 81%, बट स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू। पीपल से लिसन टू योर हार्ट, सम से लिसन टू योर ब्रेन, बट आई एम अनेबल टू डू सो, प्लीज हेल्प, ऐसा कहती हैं। कोयना का प्रश्न है कि वो 12वीं की स्टूडेंट हैं, वो पास आउट कर गई हैं, 81% मिला है उनको, बट वो अभी कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। कुछ लोग कहते हैं आप अपनी दिल की सुनो, कुछ लोग कहते हैं दिमाग की सुनो, मैं सोच नहीं पा रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें, ऐसा कोयना कहते हैं।
फिर तो मैं अपनी अनुभव सुनाना चाहूंगा
जी,
कि मुझे भी 12वीं पास हो गया, तो मुझे क्या करना है। उस समय पर मैं 16 साल का था, उस समय पर तो हमको उस समय पर ऐसा सौभाग्य मिला, प्रोफेशनल माना मेरे अंदर क्या है, मुझे किस बात में रुचि है। जैसे पेंटिंग करने वालों को संगीत सीखने के लिए भेजेंगे, वो क्या होगा आप बता दीजिए। तो इसी प्रकार आज की जो शिक्षा प्रणाली जो है, वो बच्चे का विशेषता के ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर थोपा जाता था, तुम अभी डिग्री कर लो, अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लो, इस तरह से बच्चे का सोच नहीं होता, इनके पेरेंट्स या इनके दोस्त या इनका, इस तरह से थोपा जाता है। तो इसलिए बच्चे, आप अपने दिल के अंदर आपको क्या ऐसी बात अच्छी लगती है जो आपको सहज वो अपना बन जाता है, जो वो टैलेंट बिना मेहनत के, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने ऐसे ही भेज दिया सभी को, नहीं, हर एक के अंदर ये विशेषता है, परंतु उस विशेषता को पहले हम परखेंगे, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस बात में रुचि होती है। सुनो सबका, पर अपने दिल में कौन सा अच्छा लगता है जो मैं सहज कर सकूं। मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में मुझे 100 मार्क्स नहीं मिलेगा तो मैं मास्टर जी से लड़ूंगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कभी अंग्रेजी आ जाती थी तो कम आता, मुझे पता है कि भाई मुझे कम मार्क्स मिलेगा, पर पास तो होना है, भले बाय हार्ट करके ही करना पड़े पास होने के लिए वो, परंतु टैलेंट जो है, जो हमारे अंदर जो हमको रुचि है, तो वही जो मैथमेटिक्स का रहा, वो मैं इंजीनियरिंग के तरफ गया, मैं इंजीनियरिंग का पढ़ा, तो आज आपके सामने बैठा हूं। जो उन्होंने पहले आपको सुनाया कि ये सारा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारा टेक्नोलॉजी है। आज भी मुझे उस पर रुचि है क्योंकि वो मेरे अंदर की है। 81 इयर्स है आज, फिर भी मुझे टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है और बहुत सहज लगता है क्योंकि ये जैसा ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ये है। तो इसी प्रकार बच्चे आपको जो अच्छा लगे बहुत प्यार से, जब आपकी विशेषता जब दूसरे देखेंगे तो आप आगे जाएंगे। ईश्वर ने आपको कोई ना कोई कला जरूर दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भाई किसी के अंदर कला हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओम शांति।
थैंक यू भाई जी, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया और ये बहुत ही फायदे वाली भी बात है। और हमारे दोस्त अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो बट एक्चुअल में देखा जाए तो दिल आपका क्या है, क्या ऐसी चीज है जो आपको डिफाइन करता है, आपको क्या पसंद है, जिस चीज को आप हमेशा करना अच्छा महसूस करते हैं, वो आपने अपने उदाहरण से बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी आपको हमेशा से इंटरेस्ट करती आई है और कैसे इस चीज को आपने अपने लाइफ के लिए गाइडिंग फोर्स बनाया और उसी चीज में आपने इतनी सेवाएं आगे की हैं। अगला एक प्रश्न भी एक स्टूडेंट से ही है, नागश्री नाम है इनका और ये फेसबुक से लाइव जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं कि हम पढ़ाई के दौरान कॉन्सेंट्रेशन में कंसिस्टेंट कैसे बने रहें। वो कहती हैं कि मैं घर पे रहती हूँ और हमेशा फैमिली मेंबर्स आपस में बात करते रहते हैं और मैं उनको ये नहीं कहती कि कह नहीं सकती कि भाई चुप रहो ताकि मैं पढ़ाई करूं, बट कैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन को कंसिस्टेंट बनाऊं, ये पूछती है नागश्री।
नागश्री जी बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मुझे कहा गया इस संस्था में मैं आया तो आपको हम शांति का मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मेरी तो प्रश्न यही है कि मैं ये मेडिटेशन कहाँ करूं, कहाँ सीखूं। तो हर जगह में आवाज ही आवाज है। आप सोचो कोई शहर में हम रहते हैं तो कोई शांति का स्थान तो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार जो सिचुएशन जहां है तो उसी स्थान पे रहते हुए भी जो हम अपना कॉन्सेंट्रेशन को बना रखे, तो ये एक छोटा सा टेक्निक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब शांत हो जाए तो हमको शांति मिले या हम अपना कार्य शांति से कर सके, ये कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि परिवार भी ऐसा है, हर एक को अपनी अपनी रुचि होती है, हर एक को अपना अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो इसी प्रकार ये एक छोटा सा टेक्निक है। देखो आपको किसमें कोई रुचि होती है ना, तो भले कुछ भी हो आप केवल उसी में इंटरेस्ट रखेंगे। कोई बच्चे को भी आप देखो, उसको कोई अच्छी चीज लग जाती है तो वो ऐसा लग जाता है, बाजू में क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, उसी में लग जाता है। तो ये भी आपका मन केवल आपको जो चाहिए, आपको अच्छा लगता है उसी में वो लगा रहेगा। थोड़ा सा इसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। मन को चंचल कहते हैं लोग, परंतु हम कहते हैं यही मन है जो ईश्वर को भी याद करता है, जिसको प्रेयर कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं। तो इसीलिए आप भी 2-3 दिन भी इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि मन को हम जिसमें हमको रुचि है उसमें लगा रखे, भले बाहर कोई भी कुछ भी करे पर आप अपना कर सकेंगे, इतना अच्छा लगेगा। कई बार दूसरे लोगों को ये लगेगा हम आपको बोल रहे हैं सुन क्यों नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सीखना होता है बेटे। आप जब सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप ये कंप्लेंट कभी नहीं करेंगे कि दूसरों को कारण मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कभी भी नहीं। और आप इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके अपना जीवन ऐसे बनाएंगे जो दूसरे के लिए आप आदर्श हो सकते हैं। इसीलिए पहली बात आज से ये फाइनल कर दीजिए, कुछ भी हो मैं तो डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। ओम शांति
जी। बहुत ही सुंदर बात कही भाई जी कि मेडिटेशन इस चीज को एनहांस कर देता है कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते, कि आप मेडिटेशन करेंगे तो बाहर की चीजें आपको असर नहीं करती, आप खुद से अंदर से कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारे एक और दोस्त पूछती है, नाम है इनका मोनिका और मोनिका फेसबुक से लाइव देख रही है और वो प्रश्न पूछती हैं कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में शांत रहने वाले लोगों को दूसरे लोग लापरवाह क्यों कहते हैं भाई जी, प्लीज एडवाइस करें, ऐसा पूछते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर हम बहुत पीसफुल लोग हैं तो लोगों को लगता है इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे चीजों को हम कैसे डील करें, ये मोनिका पूछती हैं।
मोनिका बहन सही बात है, आजकल जरा लोग सब अपना स्वार्थ का ही करते हैं, जो भी कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा शांत है तो वो अपने लिए ही शांति का आनंद ले रहे होंगे। तो हमारा सिद्धांत ये है, मैं जब इस संस्था में आया तो मुझे एक स्लोगन दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इफ यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। हम ये सोचते हैं कि मैं शांत रह जाऊं, हमारे लिए नहीं, हमारी शांति का वातावरण भी दूसरों को शांति का प्रदान करे, परंतु वो शांति जो बिना स्माइल के, वो शांति किसी काम की नहीं है। वो आप अकेले हैं और आपको कोई अपना ही करना है तो वो एक और शांति है। बाकी हम शांत रहना, उसमें खुश रहना, ये आप एक एग्जाम्पल और सैंपल बन सकते हो, जो दूसरे भी कहेंगे ये शांत भी है और खुश भी है, ये कैसे होता है। तो ये टेक्निक भी हमको मेडिटेशन में सिखाया जाता है। तो इसीलिए हम वो शांति नहीं है जो कुछ हो गया तो शांत हो गए, वो शांति नहीं है हमारा। खुशी में भी शांति हो, कई जगह में जब खुश होते हैं तो हा 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 सब खुशी प्रकट करते हैं, उसके बाद देखो तो हर एक का फिर अपनी अपनी होती है। पर हम लोग शांति होते हुए, शांत रहते हुए खुशी भी हमारा साथ रहे, वो ऐसा नहीं कुछ हुआ तो खुश, नहीं हुआ शांत, वो नहीं है। तो हमारा शांति खुशी के साथ रहेगा, जैसे शांत हम सदा रहना चाहते हैं तो खुशी भी हमारे साथ सदा हो, जो दूसरों को अच्छा लगा। क्योंकि सिर्फ शांति किसी को लंबा नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग सबको ये सिखाते हैं कि खुश भी रहो तो शांत भी रहो। तो जिसको हम कहते हैं सदा एक ईश्वर प्रेम में रहना, ईश्वर की चिंतन में रहना, तो ये योग जो है जिसको हम खुशी का योग कहते हैं, शांति का योग सिर्फ नहीं है। तो ये हम अभी सभी को सिखाने की प्रयास करते हैं, सभी स्कूल कॉलेजों द्वारा भी हम इसको सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। ठीक है,
थैंक यू भाई जी, बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही कि सिर्फ शांति वाली चीज नहीं है, खुशी वाली भी चीज है, कि अगर हम इस चीज को ऑब्जॉर्व करेंगे अपने अंदर तो लोग भी हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, खुश होंगे, तो आपकी शांति उनको फीकी नहीं लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगा। दो दोस्तों के सवाल हैं जो मैं क्लब करके पूछना चाहता हूं भाई जी, दोनों थोड़े सिमिलर हैं। एक यूट्यूब से हमारे व्यूअर हैं, लाली नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछती हैं कि हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हर्ट, आई कुड नॉट बी आई एम, वो कहती हैं कि वो किसी को फॉरगिव करने में अपने आप को अनेबल महसूस करती हैं कि उन्होंने कुछ गलती की है उसके सामने वाले व्यक्ति ने, बट ये माफ नहीं कर पा रही हैं, बट वो अपने लिए शांति चाहती हैं, बट इसकी वजह से ये जो हो रहा है इशू, इसकी वजह से उनको बहुत हर्ट सा फील हो रहा है और वो फॉरगिव भी नहीं कर पा रही हैं, ऐसा लाली पूछती हैं। और एक और दोस्त है जो मिलता जुलता ही सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि उनको अपने एक फैमिली मेंबर से थोड़ी बहुत टसल है, उसकी वजह से फैमिली के रिलेशनशिप्स में नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, तो उस नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव में बदल के कैसे बेटर रिलेशनशिप बनाए फैमिली के साथ, ये पूजा पूछती हैं। पूजा और लाली दो लोग हैं।
बहुत अच्छा बहनों, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, मैं भी कभी कभी ईश्वर से पूछता था कि कितना सुंदर फूल बनाए, तोड़ने जाए तो खांटा लगे, तो मैं यही पूछता था इतना सुंदर फूल और वो कांटा लगता है। तो इसी प्रकार आज हमारे हर व्यक्ति में अच्छा भी है तो कुछ ना कुछ उन लोगों की कमियां भी होता है, जो हम लोगों को वो कमी लगता है, परंतु उनको वो नहीं समझ में आता है, या उनका जो जीवन रीति है, जो पद्धति है, तो वो उसी तरह से रह रहे हैं। तो हम लोगों को भी, जैसे हम इस दुनिया में हर फूल को, हर फल को, हर चीज को जैसा वो है ऐसा देखते हैं, तो उसमें हम खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है। तो इसी प्रकार दूसरे हमारे जैसा हो, हम जैसे सोचते हैं ऐसा करें, ऐसा बोले, ये सदा पॉसिबल नहीं है। भले माँ बाप बच्चों को कुछ करने के लिए अपने आप को मोल्ड जरूर कर लेते हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो लोग अपने हिसाब से वो बच्चा करे ऐसा चाहते हैं। ये हरेक के साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए हम पहले जो भी दूसरा है, जैसा भी है, उसको पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो कभी कभी हम क्लोज किसी के पास आ जाते हैं और वो चीज हमारे लिए वो सही नहीं है, वो इसको हर्ट कहते हैं कि भाई देखो मैं इतना उन लोगों के लिए सोचा पर इन्होंने देखो ऐसा किया। तो ये जो चीज है ये एक दिन में, एक साल में नहीं है, कई बार कई दिन के बाद जो हरेक का संस्कार है, उनकी जो किस जिसको हम कहते हैं ये हर्ट किया इन्होंने, ये हमको मालूम पड़ता है। परंतु तो अपने को थोड़ा सा ये सोचना होता है कि वो उसका संस्कार है, तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, परंतु उसको हेट भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम उस बात को हेट करेंगे वो आपके दिल के अंदर वो और गहरी होती जाती है। तो आप जिस बात को भूलना चाहते हैं तो उस बात के लिए थोड़ा सा एप्रिसिएशन, वो उनका है, वो मेरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करेंगे, परंतु वो उनका है, हे भगवान इनको भी अच्छा करो। इसको हम कहते हैं सदा दूसरों का भला सोचने से दर्द कम होता है, इसको कहते हैं हम आशीर्वाद, जो बुद्ध की कहानी में सुनाते हैं ना। तो एक ने गाली देता गया सामने उसके लिए, तो वो चुप रहा, तो बाद में उसने पूछा तो मैं इतनी गाली दे रहा हूं फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने एक ही बात कहा, तो आपके हाथ में एक गुलदस्ता है तो आप मुझे देने जा रहे हो तो मैं उसको नहीं लेता, तो वो गुलदस्ता कहां रहेगा, तो आपके हाथ में ही रहेगा। तो इसी तरह से जब कभी कोई भी ऐसा करता है तो वो उनका है, तो आप ये समझना कि भाई उनका पास ही रहे, वो मेरे पास नहीं, वो उनका है, तो इसीलिए आपने ले लिया तो फिर तो आपका हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए जो आप है, आपको जो सही लग रहा है उस बात को आप ऐसे ही रखिए, तो समय पर उसको भी रियलाइजेशन होगा, देखो मैंने इतना किया इसने फिर भी हमको कुछ ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। ये है थोड़ा सा प्रैक्टिस से होता है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास जो शिक्षा दिया जाता है ना, कर्म जिसको कहते हैं, अच्छा कैसे करें, अच्छा बुरा नहीं हो ऐसा नहीं, बुरा होते हुए भी अच्छा कैसे करें, ये सब शिक्षा हमारे स्कूल में यहां सिखाया जाता है। तो इसीलिए बच्चे, तो दूसरों का लेओ नहीं, लेने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, कभी भी कोई ऐसा करते हैं तो उस समय पर थोड़ा सा अपने को उस बात से गंभीर रहने का थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि भाई सबके घर में बहुत अच्छे सब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, हरेक का अपनी अपनी जीवन पद्धति है, अपनी अपनी परिस्थिति होती है, और जहां से वो लोग जन्म लिए हैं, जहां पले हैं, वहां के संस्कार भी लेके आते हैं। फिर भी हमको ये सत्यता को जानना होगा कि हम सब अलग अलग है, तो किसी से हमको ऐसा लगता है थोड़ा सा अपने को बचाना होता है ताकि वो डीप ना हो, और दूसरा उसको बार बार याद नहीं करना होता है। तो आम कह देते हैं ठीक है मैंने माफ कर दिया, ऐसा बोलने में बहुत सहज है पर होता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में है, हम जितनी बार उसको देखेंगे वो फिर याद आ जाता है। तो इसीलिए इस बात को अपने अंदर डीप जाने नहीं देना, बार बार उसको याद नहीं करना, ईश्वर को याद करके वो उसको अच्छा हो, हे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दो। जैसे बच्चा सदा, माँ बच्चे को सदा यही सोचती है मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा अच्छा हो, ऐसे हमको भी दूसरों के प्रति सदा अच्छे हो जाए ये सोचेंगे तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, और आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं तो ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओम शांति।
थैंक यू भाई जी, बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, हम सभी इसमें हैं, बहुतों के साथ ये चीजें होती हैं, तो इसलिए अपने ऊपर इतना हैवी नहीं होना है और ईश्वर की हेल्प लेनी है, सबके लिए गुड विशेज रखना है, और ये प्रेयर्स हम भेजते हैं तो उसका असर भी होता है। आपने बहुत ही सुंदर सी बात कही। एक और हमारे दोस्त जुड़े हैं यूट्यूब से, श्याम नाम है इनका, और श्याम कहते हैं कि वो सुसाइडल फील कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा कहते हैं, इन्हें गाइड करें श्याम।
हाँ जी, तो पहली बात तो आपको याद करना होगा जो आप सुइसाइडल जो बात कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है मेरी माँ मुझे कितना मास अपने अंदर रखी, माँ जो खा रही है, माँ जो श्वास ले रही है, सब कुछ आपके लिए किया, जब आप बच्चे बने तभी भी सब कुछ छोड़ करके बच्चे के लिए माँ बाप किया, क्या नहीं किया, जो कुछ भी उनसे हो सकता है बच्चों के लिए बिल्कुल अंधश्रद्धा के रूप से सब कुछ बच्चे के लिए किया उन्होंने। तो उसके बाद आप थोड़े से बड़े होते गए तो आप अपने ऊपर पांव पर खड़े होके अपना कर्म करना आप सीखे, और जो कुछ भी है आज आप अपनी मेहनत से जरूर है, परंतु आपको बनाने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए भी तो कुछ करना होगा। तो उसमें एक ही चीज आपको करना है, तो आपको जीना है। एक छोटी सी बात है, आजकल सारे भारतवर्ष में एक बात होती है, भाई बारिश आने वाले हैं तो हमको वृक्ष डालना है, हरेक को एक वृक्ष डालना है, हरेक अपने जन्मदिन के ऊपर एक वृक्ष रखना है, इस धरती पे उसको आगे लाना है, बिना वृक्ष के ये सृष्टि काम की नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार हरेक माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी इस सृष्टि पे एक वृक्ष के रूप में वो बड़ा होवे और सबको सुख दे और माँ बाप को भी सुख दे। फिर भी माँ बाप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं मेरा बच्चा सुखी हो। तो इसीलिए आपका अधिकार नहीं है जो आप अपने आप को खत्म करो, क्योंकि आप अपने हाथ से अपने को नहीं बनाए हैं। तो माँ बाप के लिए भी, और इस दुनिया में आप ही सिर्फ नहीं हो, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो इतने करोड़ों लोग हैं हमारे, देखो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने करोड़ों के लिए वो जी रहे हैं, तो क्या आप आपके माँ बाप के लिए या आपके परिवार के लिए या आपके साथ जो आपसे गरीब और आपसे दुखित लोगों के लिए आप जी सकते हैं, तो आपने इस सृष्टि पे आए तो वो समझो माँ बाप ने जो आपको जन्म दिया वो एक सर्वश्रेष्ठ है। तो मरना तो ऐसे भी मर जाते हैं, आजकल कोरोना से भी मर जाते हैं, तो मरना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई सफलता नहीं है, इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है, फिर जाके जन्म लेंगे इससे क्या होगा। तो इसीलिए जितना हो सके जैसा हो सके, तो मनुष्य का जो आवश्यकता जो है ना वो बहुत कम है। जब दो रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते हैं तो आप कितना भी कमाओ, कितना भी ये करो, तो कम से कम में भी जी सकते हैं। आपसे भी बहुत दुखी आप देख रहे हैं कैसे वो सब जी रहे हैं। तो इसीलिए बच्चा, तो कभी ऐसा सोचना नहीं है ये शरीर त्याग करने से कोई सफलता पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं, वो गलत है। तो हमने न माँ बाप का सोचा, न ईश्वर का सोचा, जो इस सृष्टि पे जो लोग अन्य रह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ करूं, तो ये आपने नहीं सोचा। प्लीज, आपको रहना है, जीना है, जैसा भी करके अच्छा करके ही आप जाएंगे, मैं ऐसे आशा करता हूं। और ईश्वर उन लोगों को बहुत मदद करेगा जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए जिया तो क्या बड़ी बात है। तो इसलिए बेटा हमको ऐसा अभी नहीं सोचना है, तो यह कोई ये नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है लाइफ का। तो इसीलिए प्लीज आप बहुत अच्छा बन जाएंगे, आप चिंता नहीं करना, थोड़ा सा सहन रखो बस।
बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं आपने दी, और मेरे को ये बात अक्सर याद आती है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, अपनी परेशानी आपको कम महसूस होने लगेंगे। और आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि देश के प्रधानमंत्री इतने सब लोगों की जिम्मेदारी लेके वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत अगर हम किसी की मदद कर दें तो हमारी समस्याएं हमको कम होती हुई नजर आएंगी। और हमारे माता पिता, हमारे साथी, जो भी लोग हैं उनके बारे में जब हम सोचें तो ये ख्याल खत्म हो सकते हैं। और नेचुरली मुश्किलें बहुत आ सकती हैं, और ऐसे में भगवान का सहारा लेना, ईश्वर हमारे साथ है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम अपने लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं, और मीनिंगफुल है बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में हम कर सकते हैं। उस मोटिवेशन के लिए, उस सहारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। हमारे साथ फेसबुक पे अगला प्रश्न लेकर आए हैं ललित जी, और ललित फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं, ओम शांति, हाउ कैन वन कीप पेशेंस इवन इन ऑड सिचुएशंस, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं ऐसे समय पर पेशेंस कैसे रखा जाए, ऐसा ललित पूछते हैं।
ओम शांति ललित भाई, बात ऐसी है कि हमारे अंदर शांति है, बाहर ऑड है, तो ये भी एक हम सोचते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो और बात है। तो इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि ऑड में शांति कैसे हो, तो ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं कि भाई सब जगह शांति होगा तो तब हम शांत रहेंगे और अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि शायद जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये है कि सब जगह ऑडी है फिर भी हम शांत है, ये अचीवमेंट जो है तो ये हमारा लाइफ का लक्ष्य है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, वो एकदम बहुत अच्छा रास्ता हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। जीवन एक ऐसी रास्ता है वो, जिसमें हमको हर प्रकार की परिस्थिति में तय करना है। ऐसा नहीं कि हर घड़ी कोई और बात हो गई तो हमारा लाइफ में हम परेशान महसूस करें, तो वो नहीं होता है। हम पहले से ही एक्सपेक्टेड है कोई भी चीज, जैसे विदेश में, यूरोप में कहते हैं कि वहां का बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, देखते देखते बारिश आ जाता है, कभी भी आ सकते हैं, अरे साल भर, हाँ भाई साल में कभी भी वहां आ सकता है बारिश, ऐसा कहते हैं। तो हमारे जिंदगी में भी तो हम सदा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है तो मुझे अपनी शांति तो रखना ही रखना है, क्योंकि शांति हमको अच्छा लगता है। तो हम अपनी शांति छोड़ देंगे और जो ऑड जो हो रही है तो उसको हम कहते हैं साइड सीन्स, हम साइड सीन्स देखने जाएंगे, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी का ट्रक, तो जो दुनिया का पूरा किचड़ा वो लेके चला जाता है। ऐसे हम ये ऑड 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 सब ऑड ही देखता रहेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे, एक दिन लोग हमारे लिए भी ऐसा ही कहेंगे। तो इसीलिए आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहना है, और दूसरों में अच्छा दिखता है तो देखो आपका अच्छाई बढ़ता रहेगा। हर एक में कोई ना कोई विशेषता भी है और कोई ना कोई कमी भी है। हमारे में भी किसी को कुछ दिखता होगा तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए तो प्लीज आप लोग अपनी शांति भी रखना है और सबको शांति देते हुए भी उन्हों को भी खुश रखने का कोशिश करते जाने में जो आनंद है वो अपने आप में खुश रहने वालों की वो कोई नहीं पसंद करते हैं। तो इसीलिए प्लीज आप अपनी गुण को दूसरों को देते जाना है, न कि दूसरों का अपने सामने नहीं लाना है। ओम शांति। जी कहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। लगभग हम 40 मिनट के पास आ चुके हैं। अगर कुछ दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप YouTube या Facebook जहां पर भी देख रहे हैं वहां अपने कमेंट्स ले सकते हैं। हमारे पास लगभग 20 मिनट का समय और है। कुछ दोस्तों के सवाल हैं। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और गोपाल कृष्ण जी यूट्यूब से प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, स्मॉल स्मॉल हैपनिंग्स इन हाउस एंड वर्क्स डिस्टर्ब माय माइंड, एडवाइस हाउ कैन आई कंट्रोल माय एंगर एट दिस टाइम। गोपाल कृष्ण जी एक सीनियर सिटीजन हैं और वो घर में जो छोटी मोटी चीजें हो रही होती है, कुछ काम हो रहा होता है, उसकी वजह से मेरा मन बहुत डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं इस एंगर को कैसे कंट्रोल करूं, ऐसे गोपाल कृष्ण जी पूछते हैं।
तो हमको एक बात सिखाया गया है कि ये जो गुस्सा आता है ये किसी स्कूल में तो नहीं सिखाया गया है, या गुस्सा करने का घर में सिखाते हैं वो भी कोई नहीं चाहता है। जब हम ही पसंद नहीं करते हैं हमारे गुस्सा तो दूसरा हमको क्यों सिखाएंगे। ये अपने अंदर डेवलप हो चुका है। तो जैसे एक बार किसी दोस्त के कारण एक सिगरेट पीना सीख लिया तो उसके बाद वो फिर उसको सेवन करते हुए वो एक प्रैक्टिस हो जाता है। तो इसीलिए जो गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं है, किसी स्कूल में नहीं सिखाया है, या गुस्से वाला कोई दुनिया में बहुत अच्छा गाया हुआ भी कोई नहीं है। तो इसीलिए हमारे अंदर गुस्सा है तो वो हमारा नहीं है, वो हम कहीं सोसाइटी से कईयों से वो लेके देख के वो हमारे अंदर एक इजी रास्ता हम समझ करके तो हम इसको अपना बना लिया। जो आज आपको वो इतना परेशान कर रहे हैं, जैसे वो चेन स्मोकर को डॉक्टर भी बोल रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो इसीलिए भैया ये जो प्रॉब्लम है वो बाहर का नहीं है, दूसरों से नहीं है, ये मेरे से ही है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले जैसे ही जब भी गुस्सा आने की जो स्थिति होती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और आपको ये प्रयास करना है कि किस तरह से मैं किसी को खुश करूं। तो जब वो थिंकिंग आपका होगा, वो प्रयास आपका होगा, किसी को क्या बोलने से इनको अच्छा लगेगा, इस तरह से हम धीरे 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 थोड़ा सा किसी की कमी नहीं देखी है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ये जो है वो तो है भाई, परंतु हम डिस्टर्ब न होके हम इनको थोड़ा सा खुश करने का या उसको प्यार करने का उसको हम करने की प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 वो आपके अंदर खुशी लाएगा और गुस्सा कम होगा। तो इसको एक ही प्रिंसिपल लेना है, एक्सेप्ट एज दे आर एज इट इज। ये क्यों क्या में गड़बड़ हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए था, ये इसमें थोड़ा हो जाता है, परंतु भाई इस दुनिया को सुधारने जो गया ना वो न खुद सुधरा न दुनिया सुधरी। तो इसीलिए तो सेल्फ चेंज से ही हो सकता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का हम लोग स्वप्न ले रहे हैं। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम वगैरह भी इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ किसी को फायदा होता है तो हम समझते हैं हमारा फायदा होता है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि थोड़ा सा इस तरह से अपना कम करते जाएंगे, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके ओके भाई कोई बात नहीं है, इस तरह से आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी आएगी और दुआएं भी आपको मिलेगी। ओम शांति।
थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त हैं यूट्यूब से, सोनाली नाम है इनका, और सोनाली प्रश्न पूछती है कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं कुछ करना चाहती हूं, लेकिन मैं लड़की हूं तो मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं कि मैं भी कुछ जॉब करूं। प्लीज ऐसे में मैं क्या करूं, ऐसा ये पूछते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स उन पे फेथ नहीं रखते हैं कि ये आगे कुछ करें या जॉब करें, या उसके ऊपर उनको लगता नहीं है क्योंकि ये लड़की है इसलिए ऐसा उनके घर वाले ऐसा कहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सोनाली पूछती है।
हर एक माँ बाप को सोनाली बहन ये रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, परंतु अच्छा क्या हो वो उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो कला आपके अंदर है, परंतु आपको कभी कभी कुछ ऐसा उनको विश्वास आ सके तो वो धीरे धीरे करके दिखाना पड़ेगा। माँ बाप कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि भाई ये ऐसा बन जाए या ऐसा नहीं हो जाए, नहीं, अच्छी हो जाए और इस दुनिया में माँ बाप का नाम रोशन करे, ये हर एक माँ बाप चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपस में आप लोगों के लिए थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, तो आप छोटी छोटी कोई चीज, कोई ऐसी कला अपनी उनके सामने करके दिखाएंगे, उनको धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा, नहीं नहीं हमारी लड़की तो ये है, हमारी लड़की तो ये है, तो ये माँ बाप को एक खुशी मिल जाती है। तो इसीलिए आप बड़ी बड़ी बातें उनको कह देंगे तो उनको थोड़ा सा विश्वास कम आता है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है, समय जो है, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति कई बार हो जाती है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम ये इनको मदद कर पाएंगे या ऐसे कर पाएंगे तो ये हो जाएगी या इस तरह का, तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में कोई ना कोई चीज आप करके दिखाएंगे तो आपका धीरे धीरे हो जाएगा। और दूसरा तो आपके जो दूसरे मित्र जो होंगे जो सोसाइटी में, तो वो लोग भी कभी कभी माँ बाप के सामने आपकी बातें रखते हैं तो उनको थोड़ा सा उसमें और विश्वास हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ आप ऐसा डिसअपॉइंट नहीं हो जाना, तो धीरे धीरे वो लोग भी आप पर विश्वास करेंगे और आप जो चाहती हो वो कर सकेंगे। और मैं सदा ही ये देखा हूं कि जिसका अपनी जो संकल्प है वो आगे जाकर के वही होगा और वही आपको सबके सामने प्रत्यक्ष कराएगा, और माँ बाप भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनको अभी तक नहीं मालूम है आपका अंदर की जो चेतना क्या है और उसमें क्या विशेषता है, हर एक में है। इसीलिए ईश्वर के ऊपर आप विश्वास रखना, अपना प्रयास रखना, कभी माँ बाप से नाराज नहीं होना, तो धीरे धीरे वो लोग भी आपको सहयोग देंगे और आप अपनी जो संकल्प है वो पूरा कर सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखना है और विश्वास रखना है, वो लोग आपको कोऑपरेट जरूर करेंगे, वो जितना प्यार आपको करते हैं दुनिया में और कोई नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रख के करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी ये धीरज देने के लिए और हिम्मत मानने के लिए कि हाँ पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, कभी कभार वो बातें नहीं समझ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, और हो सकता है कभी कभार आप में जो जो स्पेशलिटीज वो नहीं देख पाते, पर हमेशा जो आप करना चाहेंगे उसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा जरूर। हमारे एक और दोस्त हैं, नाम है इनका सलोनी, और सलोनी जी प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इन पिछले 3-4 महीनों में ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारी के कोर्सेस किए हैं, राजयोग मेडिटेशन के ऑनलाइन कोर्सेस किए हैं, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछते हैं। तो सलोनी जी पूछती हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट टू डू सो दैट वी डोंट टेक रीबर्थ अगेन। आप एडवाइस भी कर रहे थे कि अगर आप जैसे हमारे फ्रेंड जो सुसाइड के बारे में पूछ रहे थे कि अगर आप लाइफ एंड भी करते हैं तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो सलोनी जी पूछती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़े। सलोनी
सलोनी बहन ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो शायद आपको ये कंसेप्ट इस समय पर जो दुनिया चल रही है तो शायद जन्म ना लेने तो अच्छा होगा ऐसी दुनिया में, ये जरूर आपको ख्याल आता है। ऐसे बहुतों को इस कारण आता है जो इस समय पर जो चल रही है तो इसको देखते हुए। परंतु जब बारिश के दिनों में बारिश आती है तो आपको अच्छा लगता है, तो इसी प्रकार जब सर्दी है तो सूरज आता है तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए तो ये दुनिया जो ईश्वर ने बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया था हम सबके लिए। तो समय ऐसा हो गया जो हम लोगों ने ही प्रकृति को इतना खराब कर दिए है, तो ऐसी प्रकृति में फिर से जन्म लेना नहीं चाहिए। ये कोई सिर्फ आपकी नहीं है, आज के हर व्यक्ति इस दुनिया के बारे में ऐसा सोचता है, पर ये कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर तो अच्छा है। मंदिर में जाके प्रार्थना भी उन्हीं से करते हैं। तो ईश्वर जब अच्छा है, ईश्वर की रचना ये सृष्टि जो है ये भी अच्छा है, तो ये जब अच्छे होते हैं तो तब हरेक इसमें सुखी रहते हैं, तो दुख नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका एक ही है कि ऐसी दुखी दुनिया में तो हमको नहीं जन्म लेना है, मैं आपके साथ हूं। परंतु क्या ऐसा कोई अच्छी दुनिया हो जो मेरे लिए ईश्वर जैसा अभी आपका जो शरीर दिया है आप खुश है? हरेक मैं देखता हूं आईने के सामने जाके इतना खुश होता है, मेरा चेहरा मैं हूं, तो ये खुशी ईश्वर दे सकता है? तो हम सबके लिए ईश्वर ने ये सृष्टि भी एक अच्छा दिया था, पर जैसे हम बच्चे बने, युवा बने, फिर बुजुर्ग हुए, फिर बुढ़ापे क्यों आया ये कोई नहीं पूछता। जितना दिन हम रहे अच्छे रहे, बुढ़ापे में तो थोड़ा होगा। तो इसी तरह ये प्रकृति भी अभी अपनी ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जो ये परिवर्तनशील है। जैसे पुराने मकान तोड़ते हैं नया मकान बन जाता है, इसी प्रकार ये सृष्टि भी जो आज जैसा आपको लगते हैं कि यहाँ जन्म लेना तो भाई बेकार है, तो ये आपके साथ है हम, बिल्कुल सही है। परंतु हम जो आज 20 लाख परिवार, हम जिसको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं, एक डिवाइन फैमिली कहते हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं तो अच्छा ही होना है। ईश्वर कभी भी ऐसा पुराना मकान किसी को नहीं दिया है। जब मकान बनता है, अच्छा मकान बनता है, नया मकान बनता है, जैसे बच्चा होता है बच्चा अच्छा होता है, तो इसी तरह से जन्म जो है, जैसे आप रोज एक नया ड्रेस पहनना चाहते हो, ये नहीं कहते हो कि नहीं नहीं यही पुरानी ही पहन लेंगे, नहीं, तो नया ड्रेस मिलता है, नया ड्रेस पहनने में अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार ईश्वर हम सबके लिए अच्छा ही सृष्टि बना रहे हैं। तो हम जो भी अभी इस समय पर कर रहे हैं, हरेक यही सोचते हैं कि अच्छा करे अच्छा बने। तो इसीलिए तो आप ऐसा कोई दुखी संसार में नहीं जन्म लेंगे, तो आप अच्छा करेंगे तो आपको ईश्वर भी अच्छा ही सब कुछ देगा, परंतु करना तो पड़ेगा। तो जी के करेंगे नहीं तो फिर तो जितना भी बार जन्म लेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा। इसलिए इस जन्म को आप अपना जीने का जन्म है ये, आपको जितना भी जैसा भी अच्छा कर सकते हैं तो करते जाएंगे, तो आप देखेंगे तो ऐसी जिंदगी तो हमको सदा मिले, पर करना हमको अच्छा है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आज से ऐसा कीजिए कि भाई मुझे अच्छा करना है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सृष्टि का ये नियम है, ये आप इससे आप डिफरेंस आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप हमारा कोई भी सेंटर हो तो वहां उनके साथ थोड़ा सा समय रहेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई हम जन्म नहीं लेंगे। ओम शांति।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि लाइफ में जब चीजें आती हैं तो उस चीज को बहुत बार हम ये निराशा की दृष्टि से देखते हैं, बट जब हम चीजों को होता हुआ देखेंगे, समय की जो साइक्लिक नेचर है उसको समझते हैं तो हम बेहतर समझ पाएंगे। वेरी क्विकली मैं दो सवाल पूछ लेना चाहता हूँ भाई जी। एक है प्रियदर्शिनी जी, जो कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी के नॉलेज को सीख रही हैं। वो कहते हैं कि रिलेटिव्स के घर में रहती हैं और वहां पर बिना प्याज लहसुन का या सात्विक खाना खाना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसकी वजह से उनके मन बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा ये पूछती हैं प्रियदर्शिनी।
हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो हमने यही प्रयास किया कि दूसरों की खुशी को छीन करके हम अपनी खुशी को बना दे। भले ये खाने की बात है, परंतु हम क्या करते हैं, हम जब कभी भी किसी के पास जाते हैं, हम कहते हैं आज हम आपको खाना खिलाएंगे। ये कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं। तो फिर भी हम थोड़ा सा उनको साथ दे करके जो अपनी पसंद का जो है वो पहले से थोड़ा सा वो निकाल के रख के जो उनकी जो है उनको उनकी पसंद का देंगे, तो फिर वो देखेंगे तो हमको जो अच्छा लग रहा है, पर ये ऐसा क्यों खा रहे हैं, तो इनको क्या लगता है इसमें, तो ये वो प्रैक्टिकली जब देखेंगे फिर धीरे धीरे आपके लिए भी जैसा आपको अच्छा लगेगा वो देंगे, उनको जो चाहिए वो लेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आपका बना हुआ अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगी, और बाबा की याद से हम करते हैं तो उसकी शक्ति से वो लोग भी एक दिन आप जैसा ही बन जाएंगे, परंतु पहले हमको एग्जाम्पल और सैंपल बनाना पड़ेगा। जिन्होंने भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना एक श्रेष्ठ जीवन बनाए हैं, तो जैसे ज्ञान है वैसे अन्न भी है, तो इसीलिए अपने हाथ से बना के, कई लोग हमको कहते थे आपको अपने हाथ से बनाने की क्या जरूरत है, तो आप होटल में खा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो। तो हम ये कहते हैं कि जैसा अन्न ऐसे मन है, तो हमारा संस्कार का जैसे हम बनाते हैं ईश्वर की याद से, जिसको मंदिर में देते हैं तो प्रसाद, हम अपने घर में भी ईश्वर के याद करके क्यों नहीं रोज प्रसाद लेवे। तो इसी प्रकार जो अन्न का विशेषता और उसको बनाने की भी विशेषता और उसमें टेस्ट का भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं जो हमारा खाना जो खाते हैं ना कहते हैं अरे ये तो इतना टेस्टी है ऐसे कैसे आप बनाते हैं, तो हमको इसके बारे में पहले अपने हाथ से थोड़ा सा बना के दूसरों को सैंपल देना पड़ता है। तो ये हमने सदा ही ऐसा किया है, किसी की घर में हम अछूत जैसे नहीं करते थे, हम ये कहेंगे हम आज आपको खिलाएंगे, तो उनको खाना बनाने में सहयोग देंगे। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, उनका जैसा चाहिए उनको ये करेंगे, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपके लिए आपका प्यार, फिर वो लोग भी नहीं आज हम आप जैसा ही हम करेंगे, आपको जो पसंद आए आज वो करेंगे, ऐसी जीवन बदलता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, ये सहन नहीं है, ये आपकी पूरी जीवन पद्धति या ज्ञान का जो जीवन है वो उनके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकता है। तो ये आप प्रयास करके देखिए, नफरत नहीं करना है, ये कोई तकलीफ नहीं है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी इस उत्तर के लिए, कि हम अपने से खुद से जब ऑफर करते हैं तो लोग उसके बेनिफिट ज्यादा ले पाते हैं, और इसके बारे में कुछ ज्यादा इतना नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, और हमारी चीजों से ये हो सकता है। मृत्युंजय जी एक प्रश्न पूछते हैं, मृत्युंजय पांजा हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, वो पूछते हैं ओम शांति भाई जी सेंटर्स कब खुलेंगे ब्रह्मा कुमारी इसके, ऐसा पूछते हैं। मैं समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, हम स्क्रॉल में आपको ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स के एड्रेसेस ढूंढने के लिए वेबसाइट का लिंक दिखा रहे हैं। फोन के माध्यम से आप ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स को जरूर संपर्क कर सकते हैं, फोन पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज आपको मिल सकता है। कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर वेबसाइट से ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स के एड्रेस ले सकते हैं। भाई जी हम लगभग एक घंटे के कार्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके उत्तर मैं चाहते तो बहुत सारे हैं, उन सभी का मैं प्रश्न नहीं ले पाया हूं दोस्तों आज, मगर फिर भी जितना कोशिश हम कर पाए उतने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेने की कोशिशें की है, और आगे भी ये कोशिशें जारी रखेंगे ऐसा मैं समझता हूं। आज सबने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए, उन सबके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और 100 एपिसोड्स तक आप सभी दोस्तों का साथ हमारे साथ रहा है, जिसके चलते हम इतनी लंबी यात्रा तक लगातार हर दिन करते आए। इसके लिए आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके प्रश्नों के लिए आज करुणा भाई जी हमारे साथ खास आए और आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए मैं भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई जी
मैं ये एक जरूर कहूंगा, जो ये आज हम कार्यक्रम किया है तो ये एक शिक्षा के रूप में ही किए हैं। तो कोरोना के समय पर स्कूल बंद है, कब खुलेगा, इस तरह की भी जो बातें चलती थी, तो उस बात का भी ये प्रश्न का उत्तर है कि हम लोगों को आगे जो शिक्षा लेना है तो वो इसी द्वारा हम सबको जहां भी हम हैं वहां ये शिक्षा प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी को एक सैंपल और एग्जाम्पल इन्होंने क्रिएट किया, ये 100 एपिसोड इन्होंने बड़े मेहनत से मुश्किल से इसको सब कराया और बहुत सक्सेस आप सबके कारण हुआ है। आप नहीं प्रश्न पूछते, आप नहीं देखते तो इसकी सफलता नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसी कार्यक्रम को और भी भिन्न भिन्न रूप से ऑडियो विजुअल एजुकेशन हम कहते हैं, तो इसमें कई बातें और है, आप सबकी कला भी हम दिखा सकेंगे आगे चल के, और हर एक के विशेषताओं को भी हम आगे ले आके आप सबको बता सकते हैं। तो इसका अभी बहुत प्रगति हो रहा है, डिजिटल जो शिक्षा है इसकी अनेक रूप से ये प्रगति होगी, और आप जहां भी होंगे आपको ये मिलेगा, और आपको कभी ये महसूस नहीं होगा को स्कूल खुला है या बंद है या वहां से ही हमको शिक्षा प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा मिलेंगे, और शिक्षित होकर के एक अच्छा सिटीजन बनना, ये जो भारतीय संस्कृति के हम बच्चे हैं, तो ये हम प्राप्त करना, ये एक विधि अभी शुरू हो चुका है और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सब एक जैसे बनते जाएंगे ऐसी आशा करते हुए ये जो कार्यक्रम है ये बहुत सफल रही, और ये आगे और भी सफल होता रहेगा ऐसे आशा करते हुए आप सभी को, जो ऑर्गेनाइजर्स है, मेहनत करने वाले हैं, और जो श्रोताएं जो इसको लगातार देखते रहे, साथ रहे, उन सब को भी मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच भाई जी आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी प्रेरणा से हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, और ये ब्रह्मा कुमारी की हमेशा कोशिश रही है, और आप बैकग्राउंड में रहकर हमेशा प्रेरित करते रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा नया किया जाए। मौके पर जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसे बदलकर हम हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, और ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं निरंतर नए स्वरूप में ही सही मिलती रहे और सभी का भला हो, ये शुभकामना आपकी हमेशा रही है। दोस्तों 100 एपिसोड्स हमने पूरे किए हैं, और कल से आप सभी दोस्तों के लिए एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। कल से आप सभी दोस्त 7 दिन के लिए लाइव मेडिटेशन कोर्स कर पाएंगे ब्रह्मा कुमारी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। सेम समय पर इजी मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी के एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी दीपा दीदी जी, जो अनेक कॉर्पोरेट्स में, बहुत सारे कंपनीज में, एमएनसीज में जिनकी डिमांड रहती है कि वो कोर्सेस कराएं, दीदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और शाम को 6 से 7 के बीच में वो इजी मेडिटेशन करवाएंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और जैसे ही मेडिटेशन सेशन पूरा होगा उसी सेशन में आप मेडिटेशन से जुड़े हुए सवाल जवाब भी लाइव दीदी जी के साथ कर सकते हैं, और दीदी जी आपके प्रश्नों को लाइव लेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। तो आप अगले 7 दिनों के लिए इस इजी मेडिटेशन को करना न भूलें, और हर दिन शाम को सेम समय पर यह कार्यक्रम होगा। और जैसे ये 7 दिन का मेडिटेशन कार्यक्रम पूरा होगा, हम अगले सीजन में फिर से बी द चेंज के अगली कड़ी को लेकर वापस हाजिर होंगे। और हमारा ये छोटा सा प्रयास ये रहा है कि आप सभी के पास मन में बहुत सारे प्रश्न रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान मिला है, पर मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो उन सारे प्रश्नों के लिए आंसर्स देता है, और आप अपने आप को आंसर्स दे सकें, सक्षम बन सकें, ये ब्रह्मा कुमारी का प्रयास है। और इसके लिए मेडिटेशन आपके लिए ऑनलाइन लाया जा रहा है, और मेडिटेशन को सेम टाइम शाम को 6 से 7 बजे कल से शुरू होगा, और ये लाइव सेशन होगा, और इसमें आप इंटरैक्टिव होगा, इसमें आप सवाल पूछ पाएंगे, आपको गाइड भी किया जाएगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे मेडिटेशन से जुड़े हुए मेडिटेशन सेशन के बाद। हर दिन आप देखना नहीं भूलें और 7 दिन के बाद हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे बी द चेंज में, फिर से आपके सवाल जवाब भी लेंगे। बट इसके लिए इस मेडिटेशन के टूल को आप यूटिलाइज करें। और भी अगर आप हमें कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं तो आप उस फीडबैक को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं social media@brahmakumaris.com पर अधिक जानकारी के लिए भी, और हम आपकी मदद के लिए हमेशा रहेंगे। आज भाई जी हमारे साथ हैं। भाई जी बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही सुंदर सुंदर फीडबैक्स लिखे हैं आपके उत्तर के लिए। मैं सारी चीजें वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ मेडिटेशन के दौरान, हम स्क्रीन पर उन सारे कमेंट्स को देख सकते हैं। जिन दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्रोग्राम समाप्त नहीं होना चाहिए, उन दोस्तों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बी द चेंज समाप्त नहीं हो रहा है। सिर्फ ये 7 दिन के लिए बीच में हम मेडिटेशन आप सभी लोगों को सिखाने के लिए ये मौका आपको देना चाहते हैं, ताकि आप मेडिटेशन से जुड़े हुए लाइव चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकें और लाइव आपके प्रश्नों को उत्तर मिलेगा। हर दिन हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जो अकम्प्लिश्ड योगीज हैं उनके साथ मेडिटेशन करने का सुअवसर हमको मिलता है। अरुण भाई जी पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हैं और ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर हैं, माधेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो ब्रह्मा कुमारी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, इन सभी लोगों के साथ उनके संग के रहने का उनका अनुभव है। खुद एक अकम्प्लिश्ड योगी होकर इन महान योगियों के साथ उन्होंने समय बिताया है, उनके साथ हम अगले 5 मिनट मेडिटेशन में बिताना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई जी कि आप हमें अगले 5 मिनट के आज मेडिटेशन किए दीजिए।
थैंक यू, आप सबको फिर से धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो नियम है इतना अच्छा लगता है कि आप सबके साथ मेडिटेशन करने का मौका मुझे मिलेगी। जो आप जब सीखेंगे तो आप भी हर रोज हमारे साथ, जिसको हम कहते हैं अमृत वेला, जिस समय पर सारे दुनिया सोए हुए होंगे, आप जागते हुए ईश्वर के साथ और हम सबके साथ होंगे, ये खुशी की खबर मैं सुना अभी। तो आप कल से योग का शिक्षा प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, तो अभी हम सभी साथ ईश्वर की प्रार्थना में बैठेंगे। ओम शांति।
दोस्तों हम मेडिटेशन के लिए करुणा भाई जी के साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। आज 100th एपिसोड में हमने बहुत ही अच्छी बातें की है, बहुत सारी चीजें हम सब दोस्तों ने सुना है और हम सब लोगों ने बातचीत की है। भाई जी अभी हमारे साथ मेडिटेशन के लिए वापस लौटेंगे, तो कुछ मिनट का इंतजार रहेगा। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और दोस्तों के लिए दे देना चाहता हूँ।
हूँ पवित्र आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप संतान हूं, मेरा पिता शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। इस शरीर में, इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आया हूँ। मैं अपना पार्ट बजाते हुए इस शरीर से मुक्त हो करके ज्योति स्वरूप आत्मा ईश्वर के साथ फिर से मिल रहा हूँ। ईश्वर से हर रोज अमृत वेला शक्ति प्राप्त करके इस सृष्टि में सर्व आत्माओं को शक्ति का, शांति का, प्रेम का वरदान देते हुए ईश्वर के तरफ सर्व आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण प्राप्त कराना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब मैं आत्मा अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो सारे विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब से मैं आत्मा हूं, ये स्मृति में मैं रहना सीखा, मुझे ईश्वर भी सदा मेरे साथ मुझे शक्ति का प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जितना समय मैं मेरा पिता के साथ हूं उतना आनंद होता है। तो ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता है, परमपिता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो हम आत्माएं ईश्वर से ही सर्व शक्तियां, सर्व आशीर्वाद, सर्व गुण प्राप्त करते हैं। तो एकांत एकाग्रता को ही तपस्या मानते हैं। तो इसीलिए मेरा पिता परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, जितना मैं उनको याद करता हूँ मुझे इतनी आनंद रहता है। तो मैं मेरे पिता के साथ ही जो रहता हूँ, यही मेरा योग है, यही मेरा प्राप्ति है। ओम शांति, ओम शांति।